created with free version for non-commercial use.
Padya vinodine radha darsuda pana shaline vanamaline mahabhava swarupa svam krishna priya variyase prema bhakti prade devi shri radhika tvam namostute. बोलो ब्रजमंडल धाम की जय हो, ब्रजभूमि की जय हो। तो जैसे हमने पिछले कई प्रवचनों में चर्चा की कि भगवान श्री हरि ने सारे धामों को व्रज में ही लाके बसा दिया, क्योंकि व्रज ये आदि धाम है। तो कल हम बूढ़े बद्री या आदि बद्री जाके आए, तो आज हम जा रहे हैं केदारनाथ जी।
भगवान नारायण
यह कथा नारद जी को सुनाई है। वे कहते हैं कि सत्ययुग में एक परम पराक्रमी धर्मात्मा राजा केदार हुए, और उन्होंने कोई भी कामना न रखते हुए पूरी तरह से फलेच्छा रहित होकर सविधि 100 यज्ञ भी किए थे, और कामना शून्य हृदय से उन्होंने इंद्रपद का भी त्याग कर दिया था, और प्रत्येक कार्य भगवान के प्रत्यर्थ ही वे किया करते थे। एक समय जैगीषव्य मुनि से परमार्थ पर बोध प्राप्त करके उन्होंने भगवत प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा से वन में तपस्या की।
Created with free version for non-commercial use.
और वे भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे, इसीलिए सुदर्शन चक्र नित्य इनके रक्षार्थ उनके निकट रहता था, और उनके उत्कट तप प्रभाव से और भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भाव से उन्हें नित्यधाम गोलोक की प्राप्ति हुई, और जहां पे उन्होंने यह तप किया उस स्थान को ही केदार क्षेत्र कहते हैं। और शास्त्र वचन है कि यहां जो भी व्यक्ति अपने प्राण छोड़ देता है, प्राण का त्याग कर देता है, उस जीव को उसी क्षण मोक्ष प्राप्ति होती है। और ये केदार क्षेत्र भगवान श्री हरि का बड़ा प्रिय था, और इसीलिए भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने
created with free version
इस
for non-commercial
केदार क्षेत्र
use.
को काम्यवन के पास ही बसा दिया। काम्यवन या जिसे हम अभी कामवन कहते हैं, श्रीपाद जीव गोस्वामी अपने श्रीमद् भागवत के वैष्णव तोषिणी टीका में लिखते हैं कि कामवन ही आदि वृंदावन है। वे कहते हैं श्री वृंदावन काननेषु तद अंतर्गतेषु च काम्यवनादिषु च तत्र तयोर विहारो वेश विशेष चोक्तः। इसी कामवन के पास जो स्निग्ध और श्वेत रंग की शिलाएं हैं, यही केदारनाथ या कैलाश कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के
created with free version for non-commercial use
में लिखा है कि ये महेश, विश्वेश, ये सारे भगवान के वाम पार्श्व भाग से प्रकट हुए हैं, और जब प्रकट हुए तो स्फटिक मणि की कांति से युक्त और अरबों सूर्यों के भांति तेज पुंज थे। फिर कहते हैं ये जो भगवान शिव थे, जो शिव है थे, मैंने गलती की, पंचमुखी त्रिलोचन के कर में त्रिशूल था, और वे प्रकट होकर अपने मूल अंशी भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख होकर उनकी प्रार्थना करने लगे और उन्होंने कहा, जय जय स्वरूपम जय देशम जयेशम जय कारणम प्रवरम जय
राम
पराजितम विश्वम विश्वेश्वरम च विश्वेशम विश्वकारणम विश्वाधारम च विश्वस्तम विश्वकारण कारणम विश्वरक्षा कारणम च विश्वग्नम विश्वजम परम फलबीजम फलाधारम फलम च तत्फलम प्रदम तेजस्वरूपम तेजोदम सर्वतेजस्विनाम्बरम सर्वेषां वरदायकम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अपने तीनों नेत्रों से प्रेम प्रेमाश्रु प्रवाहित करते हुए और अपनी दृष्टि को भगवान श्री कृष्ण के मुखारवंद पर
created with free version for non-commercial use
उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से भगवान श्री हरि की ये प्रार्थना की और शिव जी के प्रकट होने के पश्चात फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, महाविष्णु प्रकट हो गए, फिर मति से ईश्वरी दुर्गा एवं मन से रमा प्रकट हुई और प्रभु ने सभी देवों को शक्तियां प्रदान कर दी। फिर विधि को सावित्री, धर्म को मूर्ति, कामदेव को रति और महादेव को महाशक्ति दुर्गा देवी। और तब श्री महादेव बोले, हे प्रभो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि ब्रह्मपद रुद्रपद यहां तक कि परम पद की भी कोई मुझे कामना नहीं है, क्योंकि ये सब भगवत सेवा के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। मैं तो
created with free version for non-commercial use
मात्र आपकी सेवा की अभिलाषा करता हूं। अतः भगवान श्री हरि ने उनको कहा, हे शशांक शेखर, तुम 100 करोड़ कल्प पर्यंत मेरी सेवा करके मृत्यु को जीत कर मृत्युंजय हो जाओगे और फिर शिवा को ग्रहण करोगे। जैसे एक मां शिशु का पालन करती है, तदनुसार सती स्त्री भोग से ऊपर उठकर अपने पति का पालन करती है। अतएव हे शिव, तुम शिवा का तिरस्कार न करना, यह वैष्णवी है, यह तुम्हारा पालन एवं तेज का वर्धन करेगी। और फिर दुर्गति नाशिनी दुर्गा से बोले, हे दुर्गे, तुम मेरे साथ गोलोक चलो, समय आने पर शिव को पति रूप में प्राप्त कर लोगे। कालांतर में भगवत आज्ञा से भगवती का वरण किया और त्रैमासिक व्रत के द्वारा राधा माधव युगल सरकार की उपासना कराई। तो यहां पे हम देखते हैं कि शशांक शेखर महादेव जी ने भी माता सती को, शिवा को त्रैमासिक व्रत के बारे में बताया। वो व्रत जो सविधि से सबसे पहले भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था और इसी व्रत के फल स्वरूप भगवती दुर्गा ने श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी जैसे दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त किए थे। तो भगवान रुद्र अपने पत्नी को उपदेश
created with free version for non-commercial use
सविधि ये व्रत का महिमा उनको बताकर इस व्रत को करने की उन्हें आज्ञा देते। तो भगवान रुद्र कहते हैं माता भगवती से कि हे देवी, वैशाख मास में यह व्रत आरंभ करना चाहिए, फिर यजुर्वेद की माध्यम दिन शाखा में वर्णित श्रीजी के रूप का ध्यान करना चाहिए। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण खंड में, कृष्ण जन्म खंड के 16वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। वे कहते हैं, ध्याये सदा राधिकाम ध्यानम अध्यान दिनेरितम राधा रासेश्वरी रम्या रासोल्लास रसोत्कम।
Created with free version for non-commercial use.
रास मंडल पर आसीन रासेश्वरी रासो उल्लासलिनी श्री राधा रानी रास की अधिष्ठाती है, इनकी कृपा के बिना रास में प्रवेश प्राप्त नहीं होता। और स्वयं शिव जी कहते हैं कि हे देवी, मुझे शिव को भी इन्हीं श्री राधारानी की कृपा से रास में प्रवेश प्राप्त हुआ है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में 16वें अध्याय में यह 37वां श्लोक है, जहां पे वे कहते हैं, रसिक प्रवराम रम्याम रमाम च रमणोत्सुकाम शरद्राजीव राजीनाम प्रभामोचन लोचनाम। विकसित विशाल कमल दल की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले इनके आकर्षक अन्यन रंजित युग्म नयन मदन के शरसंधान को भी हेय बना देने वाला वंकिम भ्रू विलास और शरद पूर्णिमा के राशि के भांति मधुस्मित विभूषित मुख और नवीन दर्पण का गर्व चूर्ण करने वाले गोल कपोल पर पत्रावली की अपूर्व शोभा है। चरण कमलों में शब्दायमान नूपुर कमल कोश में उड़ते हुए भ्रमर पंक्ति के समान नाद करते हैं। रत्रेन्द्र सार रचित जगमगाते हुए हार से युगल वक्षोज उल्लासित हो रहे हैं। और वे कहते हैं कि ये श्रीजी जो है, ये केवल मैं और शिवजी ब्रह्मा जी द्वारा नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण श्री कृष्ण के द्वारा भी सेवित है। 92वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मादि से सेवित श्री कृष्ण स्वयं सेवक बनकर उन सर्वेश्वरी के पाद संवाहन की सेवा करते हैं। और इसलिए हम सेवा कुंज की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि वहीं पे श्री जी के चरणों की सेवा में स्वयं ब्रजराज कृष्ण हैं। और वे फिर अपनी पत्नी को बताते, देखिए ये हर एक पति का कर्तव्य है, अगर वो अपने आप को पति समझता है, पति यानी पायतिसा, जो अपने पत्नी का संरक्षण करे, किससे? तो जन्म मृत्यु के जंजाल से। तो इस ब्रह्मांड की पहली दंपत्ति जो है भगवान शिव और पार्वती, उनके व्यवहार से हमें सीखना है कि किस प्रकार से गृहस्थ धर्म का आचरण करना है। हर पति का कर्तव्य है कि वो अपने पत्नी
Created को with free version for non-commercial use.
की जो प्रिया है श्रीमती जो है उनकी सेवा में लगाए, जो कि शिव जी ने स्वयं शिवा को भगवती को सर्वेश्वरी श्रीमती राधिजा की सेवा के लिए प्रोत्साहित किया। और वे कहते हैं कि हे दुर्गे, ऐसी कृष्ण कर्षिणी करुणा वर्षिणी श्री जी की मैं आराधना करता हूं, अतः तुम भी इस त्रैमासिक व्रत के द्वारा श्री जी की उपासना करो। वे कहते हैं कि षोडशोपचार से श्री जी की पूजा करो, 108 दिव्य कमल नित्य श्री जी को अर्पण करो, कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए उनको आहुति प्रदान करो, प्रतिदिन 108 ब्राह्मणों को भोजन कराओ और सतत श्री कृष्ण संकीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिस दिन व्रत की प्रतिष्ठा या उद्यापन हो तो 1000 कमलों की आहुति देना, 9000 ब्राह्मणों का भोजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, फिर 90 फलों का दान करना, इस व्रत के प्रभाव से 100 जन्मों तक नारी विधवा नहीं होती और अखंड पुत्रवती बनी रहती है। तुम प्रत्येक जन्म में मुझे प्राप्त करना चाहती हो, सुंदर पुत्र चाहती हो, तो इस त्रैमासिक व्रत द्वारा श्री जी की उपासना करो। यह सुनकर श्री पार्वती जी बोली, यज्ञ करना, दान करना, वेदाध्ययन करना, तीर्थ सेवन करना, सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगाना, ये सब भगवान श्री कृष्ण की आराधना के 16वें अंश भी नहीं है।
Created with free version for non-commercial use.
सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा जप, और जिसके अंदर भगवान की भक्ति है उसके दर्शन से ही जीव मुक्त हो जाता है। और वही भक्ति विनोद ठाकुर वे अपने भजन में कहते हैं कि गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन, वैष्णव के दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गंगा का स्पर्श करने से या गंगा में स्नान करने के पश्चात व्यक्ति पवित्र होता है, तो भगवत भक्त के दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र बन जाता है। दर्शन ने पवित्र कोरो यही तो मार गुण, वैष्णव का गुण ही यही है कि वो उसके दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। फिर दुर्गा जी कहते
Created with free version for non-commercial use.
हे नाथ, हे शंभो, ब्रह्मा विष्णु धर्म शेषनाग, आप में और गणेश में जो तेज है वो उन्हीं राधा माधव के चिंतन का प्रभाव है, यानी भगवत चिंतन से व्यक्ति तेजोपुंज होता है। उसके लिए कोई कॉस्मेटिक जेल लगाने की आवश्यकता नहीं है, या मुंह पे सारे अलग अलग प्रकार के मलम पोतने की आवश्यकता नहीं है, या ब्लीचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपना तेज बढ़ाना चाहते हो तो यहां माता पार्वती जो इस पूरे ब्रह्म इस भौतिक जगत की अधिष्ठाती देवी है, वे स्वयं कहती है कि अपना तेज बढ़ाना चाहते हो, और तेज जिन्होंने बढ़ा है उन्होंने क्या किया है, तो श्री राधा माधव का चिंतन किया है। भगवत चिंतन करोगे तो तेज बढ़ेगा, चिंता करोगे तो बूढ़े हो जाओगे। तो अगर आपको चिरतरंग लिखना है तो क्या करना चाहिए, भगवत चिंतन करना आवश्यक। और ये कौन बता रहा है, यहां की सुपरिटेंडेंट बता रही है, इस दुर्ग की जो सुपरिटेंडेंट है वे हमें सिखा रही है कि अगर आपको यहां पे तेजोपुंज बनाए रखना है, अपने मुखमंडल पर तेज प्रभा अगर रखनी है, तो भगवत चिंतन आवश्यक है। और वे आगे कहते हैं कि कृष्ण कृपा से ही मुझे आप जैसे पति और गणेश कार्तिकीय जैसे पुत्र रत्न प्राप्त हुए। और फिर माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और बोले, हे दुर्गे, तुम तो महालक्ष्मी रूपा हो, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु असाध्य नहीं है, तुम तो सर्व संपत् स्वरूपा अनंत शक्ति रूपिणी हो। मैं ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे अंदर भाव रखने के कारण ही सृष्टि निर्माण पालन और संहार में समर्थ है, हम सब तुम्हारी सहायता से ही कार्यरत है, तुम आद्या शक्ति हो, तुम श्री राधा रानी की उपासना करो। इस व्रत में सनत कुमार तुम्हारे पुरोहित होंगे, यज्ञ में जितने भी साधन लगेंगे, कमल द्रव्यादि, मैं उसका प्रबंध करूंगा। तुम्हारे इस व्रत में दान अध्यक्ष मैं स्वयं रहूंगा, भगवती लक्ष्मी धन की पूर्ति करेगी, अग्निदेव स्वयं वेद पाठ करेंगे। अग्नि का एक नाम है हव्यवाट, सारा यज्ञ का भोजन देवताओं के पास वे ही पहुंचाते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये लोग ढोंग करते हैं, आग में सारी चीजें जलाकर बोलते हैं कि ये देवताओं को प्राप्त होगी। ये कैसे संभव? यहां डालोगे और वहां प्राप्त होगी, सब में कैसे बढ़ जाएगी? केवल अग्नि में ही आप उनको जला के राख कर रहे हो। लेकिन उन मूढ़ गर्दभ राजाओं को यह कल्पना नहीं होती कि अग्नि का कार्य है बांटना। आप जो भी अग्नि को अर्पण करोगे वे सबको बांट देते हैं। अगर इसका आपको उदाहरण देखना है तो उन गर्दभ राजाओं को मैं एक उपाय बताता हूं क्या करना है उनको। अगर उनको प्रमाण ही चाहिए कि अग्नि कैसे बांटता है तो एक लाल मिर्च ले लो और उसको अग्नि में डालो तो देखो तुरंत जितने भी आजू बाजू के सारे लोग हैं तुरंत खांसना शुरू कर देंगे, क्योंकि अग्नि सबको सब बांट देती है। भक्तों को यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अग्नि में अर्पित होता है वो भगवान को अर्पण हो जाता है, इसलिए मिर्ची मत डालो। लेकिन इन गधों के लिए मैंने बताया।
Created with free version for non-commercial
use. शास्त्र के हर वचन पे शंका कुशंका तर्क वितर्क रहता है, तो ऐसे गधों के लिए ही है, भक्तों के लिए नहीं। आप अग्नि के प्रति अपराध मत करें इस प्रकार की चीजें डालकर। और फिर आगे बताते हैं कि सारे यज्ञ का भोजन देवताओं के पास पहुंचाने का कार्य अग्निदेव कहते हैं, और वे अग्निदेव तुम्हारे व्रत में वेद पाठ करेंगे। वरुण देवता आकर जल का प्रबंध करेंगे। सभी देवता राधा रानी की उपासना में तुम्हें सहयोग देंगे। यक्ष लोग सामग्री ढोएंगे। स्कंद स्वामी कार्तिकेय उस सामग्री के अध्यक्ष रहेंगे। और इस व्रत में बुहारी लगाने का कार्य स्वयं वायु देवता करेंगे, क्योंकि ये श्री जी की उपासना है। तो बुहारी करना यानी झाड़ू लगाना ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। और व्रत में बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े पहुंचे हुए हस्ती जो है वे भी संत महात्मा अपने आप को धन्य मानते हैं इस बुहारी सेवा करने के लिए, झाड़ू सेवा करने के लिए। क्योंकि ब्रज की रज आपके शरीर के ऊपर आती है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देव दुर्लभ ब्रज रज वो आपको प्राप्त हो जाती है। फिर आगे वे कहते हैं कि परिवेशन का कार्य, सबको परोसने का कार्य स्वयं इंद्र करेंगे, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा है। और फिर शिवजी कहते हैं यहां पे सूर्य देव दान का निर्वचन करेंगे, असंख्य ब्राह्मणों को तुम भोजन करा। और इस प्रकार से दुर्गा के द्वारा ये त्रैमासिक व्रत का अनुष्ठान करवाया, और उस अनुष्ठान के प्रभाव के कारण उन्हें गणेश की प्राप्ति हुई, कार्तिकेय की प्राप्ति हुई। भगवान शिव की ऐसी भक्ति है राधा माधव युगल सरकार में। एक बार श्री जी ने ठाकुर जी से पूछा कि भगवान शंकर अस्थिमालाएं क्यों धारण करते हैं, जहर आग धतुरा क्यों खाते हैं। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है, लेकिन अवश्य हमें इसके उत्तर मालूम नहीं है, और उत्तर मालूम न होने के कारण हम हमारे अगली पीढ़ी को भी नहीं बता पाते कि शिवजी इस प्रकार से व्यवहार क्यों करते हैं और उनको ऐसे अस्थि की मालाएं धारण कर लेते हैं, मुंडन माला गले में धारण कर लेते हैं, शरीर के ऊपर रक्षा लगा देते हैं, और हम उनको वैष्णव में महान वैष्णव कहते हैं, वैष्णवानाम यथाशंभु कहते हैं, शिव यानी पवित्र मंगलमय कहते हैं। कैसे संभव है? जो जहर खाते हैं, आग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि वे गांजा पीते हैं। आजकल के गधे लोग उनको अपने आप को उनका भक्त समझ करके गंजेड़ी बनते हैं और बताते हैं कि हम शिवजी के भक्त हैं, उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा है कि गांजा फूकते हैं या बाकी की नशीली चीजें शिवजी ग्रहण करते हैं। तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका जी को कहते हैं कि हे राधे, एक बार महादेव जी ने 60,000 युगों तक मेरा भजन किया और उसके बाद मैं उनके सामने प्रकट हुआ।
Created with free version for non-commercial use.
रूप को देखकर उनकी आंखें तृप्त नहीं हुई और उनमें मन में इच्छा हो गई कि मैं भगवान को इन 3 आंखों से कैसे देख, इनका ये सुंदर रूप का मैं रसपान करना चाहता हूं। ऐसे 4 बार उन्होंने कहा तो उसके कारण उनके 4 मुख प्रकट हुए। पहले से 1 मुख था, ये उसके साथ और 4 मुख प्रकट हो गए तो कुल मिला के शिव जी के 5 मुख हो गए, इसलिए उनको पंचमुखी कहता है। अगर आपको इन पंचमुखी शिव जी का दर्शन करना है तो आज भी अगर गोवर्धन में आप चक्रेश्वर जाते हैं तो वहां पे पंचमुखी शिव जी का आपको दर्शन होगा, क्योंकि इन्हीं 5 मुखों से और 15 आंखों से उन्होंने भगवान के सुंदर रस का, सुंदर रूप का रसपान किया। फिर जो हुआ, अपने शरीर पे अस्थियां और मुंडन जो धारण करते हैं,
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज,
और उनके शरीर पे जो राख है वे सती के शरीर का जो भस्म है वो धारण करते हैं। ऐसे ही किसी श्मशान की राख वो धारण नहीं करते, बल्कि माता सती ने जो अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था तो उससे जो रक्षा उत्पन्न है उसी रक्षा को केवल अपने शरीर पे उसी भस्म को वो धारण करते हैं। और जहां जहां सती जी के अंग गिर गए थे उस वही एक एक सिद्धपीठ बना हुआ है। और जिस समय सती के अवशेष को लेकर आलिंगन करके शिवजी जो मूर्छित हो गए थे तो मैं स्वयं उनके पास जाके मैंने उनकी सांत्वना की थी और तब मैंने महादेव के पास जाकर
उनको
और तब शिवजी ने काल के द्वारा अपनी प्रिया को प्राप्त किया। उनके सिर पर जो जटाएं है वो तपस्या काल की है, जब उन्होंने 60,000 युगों तक तप किया था तब वे जाके जटाएं बनी थी। उन्हें चंदन और कीचड़ में फर्क नहीं है। फिर श्रीमती जी ने पूछा कि उन्होंने सर्पों को क्यों धारण किया है, तो ठाकुर जी बोले कि एक बार गरुड़ के भय से सारे सर्पों ने उनकी शरण ले ली तो उनको शरण देने हेतु शिव जी ने सारे सर्पों को अपने आभूषण बना के अपने शरीर पर धारण किया। तो शिव जी ने पूछा कि वे आंख और धतूरा क्यों खाते हैं, तो ठाकुर जी बोले कि जब त्रैमासिक अनुष्ठान कर रही थी उस समय उन्होंने सारे सुगंधित पुष्प हमें अर्पण किए थे और हमें अर्पण करने के कारण शिवजी अन्य किसी पुष्पों को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ये सारी मेरे स्वामी को अर्पित है तो मैं उनका कैसे भोग करूं, इसीलिए जो मुझे अर्पित नहीं है ऐसे पुष्प को वो स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कि आंख है, धतूरा है और अन्य गंधहीन जो पुष्प है वे शिवजी स्वयं धारण करते हैं। तो ये शिवजी की महानता है। और शिवजी वृषभ के ऊपर आरूढ़ क्यों होते हैं, उसको क्यों वाहन बनाया है, तो भगवान स्वयं ब्रह्मवर्ग पुराण में बताते हैं कि शिवजी का भार और कोई धारण नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्वयं भी वृषभ रूप बनता हूं, मैंने ही स्वयं वृषभ रूप धारण किया और मेरे ऊपर शिवजी
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज।
मैं बचपन से सोचता था कि लोग जाके नंदी के चरण क्यों छूते हैं और नंदी के कान में क्यों होते हैं, तो ब्रह्मवैवर्त के पुराण के अनुसार ये नंदी और कोई नहीं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तवत्सलता क्या है, वे स्वयं अपने भक्तों को अपने पीठ पे आरूढ़ करवा के उनका वहन करते हैं। तो ऐसे जो मेरे कृपालु अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम रखने वाले अगर भगवान का भजन हम नहीं करेंगे तो धिक्कार है हमारे जीवन का। और यह सुंदर संवाद ब्रह्म विवृत पुराण में वर्णित है। अगर किसी को शंका कुशंका है तो आप इसे ब्रह्म विवृत पुराण में पढ़ सकते हैं। और भगवान
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज।
प्रीति युगल सरकार के प्रति बहुत बहुत ही गाढ़ी है, बहुत ही प्रखर है। ब्रह्म विवृत पुराण में आता है कि गर्गाचार्य जी जो महादेव जी के ही शिष्य हैं, वे कहते हैं कि मैंने शिव से ही राधा रानी के नाम की महिमा का उपदेश प्राप्त किया है। उनसे ही मैंने श्री राधा रानी के नाम की महिमा सीखी है। भगवान शिव ने हमें यह दिव्य ज्ञान दिया है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में जो 13वां अध्याय है उसमें 106 7 और 8 नंबर के जो श्लोक है उसमें वर्णन किया है श्रीमती राधा जी के नाम की महिमा क्या है। वे कहते हैं रेपो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम अकारो गर्भवासम च मृत्युर्चोरोगमुत्सृजेत आधो नाम तारी श्रवण स्मरणो भक्तिभ्या प्रणश्यन्ति न संशयः। वे कहते हैं यहाँ पे कि रेपो ही कोटि जन्म अघ कर्म भोग शुभाशुभम। राधा कहने में जो रकार है उससे तो करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं, जल जाते हैं। और ये भगवान केदारेश्वर का उपदेश अमृत लहरी है, वे बता रहे हैं हमें, क्योंकि वे ही है जो श्री जी के नाम की महिमा को जानते हैं। हर कोई श्री जी के नाम की महिमा को नहीं जान सकता, और उन्होंने गर्गाचार्य को सिखाया था। और फिर गर्गाचार्य अकारो गर्भवासम च मृत्युम च रोगम उत्सृजेत। तो र में जो बड़ा आ है वे कहते हैं कि उस आकार से गर्भवास और मृत्यु भी टल जाती है। केवल रा कहने वाले को कभी भी दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, गर्भवास से मुक्ति हो जाती है केवल रा बोलने मात्र से। फिर वे आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ध कह लेता है आधो नाम तारी है श्री राधा धकार आयुषो हानिमकारो भववंदनम। ध कहने से हमारी जो रोज आयु नष्ट होती है वह रुक जाती है। ध माने धारण करना, में जो आ है वह भवरोग को हटाता है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में यहां तक लिखा है कि शोक रोग मृत्यायमा वेपन्ते नात्र संशया। जब कोई श्रीमती राधा रानी का राधा नाम लेता है तो रोग शोक मृत्यु और यमराज कांपने लग जाते हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि यह नहीं समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ब्रज से चले गए। भगवान ब्रज से कहीं नहीं जाते। तब प्रश्न आता है कि मथुरा द्वारका की लीला किसने की? तो उत्तर देते हुए गर्गाचार्य जी यहां पे कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उनके साथ नारायण विष्णु और महाविष्णु सब उनके शरीर में लीन थे। और नारायण अंश वाले जो कृष्ण है वे मथुरा द्वारिका चले गए और वहां पे उन्होंने लीलाएं की। लेकिन बंसी बजैया जो श्याम सुंदर है वे ब्रज से कभी बाहर नहीं गए, वे नित्य ब्रज में ही रहते हैं। वे कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। और इसीलिए ब्रजवासी अभी भी कहते हैं कि हमारो मुरली वालो श्याम, हमारा कौन है वो मुरली वाला श्याम, चक्र सुदर्शन धरी श्याम नहीं बोलते वो। और यहां तक वहां बताया गया है श्री राधा जी के नाम के बारे में, चक्रम चक्री शूलमादाय शूलिपाशम पाशी वज्रमादायम वज्री धावंत्याग्रे पृष्ठतो बाह्यतश्च राधा राधा वानिनो रक्षणाय। जो राधा राधा कहता है उसकी रक्षा के लिए विष्णु भगवान चक्र लेकर, इंद्र वज्र लेकर, महादेव जी त्रिशूल लेकर, ये सब राधा नाम लेने वाले के आगे मुझे उसकी रक्षा करने के लिए भागते हैं। ये नाम का महिमा है श्रीमती राधा रानी जी की, और ये महिमा केवल महादेव जी ही जानते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में इसकी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है शिव जी के द्वारा, और श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो है, जो ऊर्ध्व मामनाय तंत्र में शिव गौरी संवाद जो है, वहां पे शिवजी ने स्वयं श्री राधा रानी की जो प्रार्थना की है, उनकी कृपा कटाक्ष के लिए, कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए जो प्रार्थना की है, उसमें उन्होंने कहा है, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलम् अजाविरञ्चिजापदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदाकर्ष्य सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदाकर्ष्य सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदाकर्ष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। हे व्रजेश्वरी वृषभानुवंदिनी, हे कृष्णाकर्षणी सुंदरी श्रीमती राधिके, आप मेरे ऊपर आपके कृपा कटाक्ष डालकर मुझे कब कृतार्थ करेंगे। वे कहते हैं कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, अनंत कोटि विष्णु धाम है, कोई महावैकुंठ है, कोई श्वेत वैकुंठ है, कोई श्वेत द्वीप है, कोई रमा वैकुंठ है, जिनमें जितनी पद्मजा लक्ष्मी या है वो सब राधा रानी की उपासना करते हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजा चित्र
और
हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंजिजा पौरप्रदे, हिमाद्रिजा माने अनंत पार्वतियां, पुलोमजा यानी अनंत इंद्रायणिया जो इंद्र की पत्नी है वो, और विरंजिजा माने अनंत सरस्वती जो विरंची भगवान ब्रह्मा जी जो है उनकी पत्नी, ये सारी क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं। और कहते हैं अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, उनके नख मात्र के दर्शन से अपार सिद्धियों को आप प्राप्त कर ले सकते हो। और श्री जी की उपासना के बारे में यह महादेव जी का दृष्टिकोण है, तो आप सोचिए ऐसे महादेव को, और ऐसे महादेव के प्रति कोई वैष्णव अपराध कर सकता है क्या? कई अर्धभागी मूढ़ लोग जो अपने आप को वैष्णव समझते हैं और भगवान शिव की निंदा करते हैं, उन्हें बहुत हम सचेत करते हैं कि इस प्रकार के अपराध
created with free version for non-commercial use।
क्योंकि शिवजी ने जो भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन किया है, क्योंकि वे स्वयं करते हैं उसको, ऐसे महान वैष्णव के प्रति अगर हम अपराध करेंगे तो निश्चित रूप से पतन हमारा निश्चित है। तो हम आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि शिव की महिमा का खंडन न करें। भगवान शिव हमें आराध्य है, क्योंकि वे उनके जो आराध्य है, जुगल किशोर श्री राधा माधव जी, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, उनके चरणों की सेवा में वे निरंतर अपने आप को लगाए रहते हैं। ऐसे निरंतर भगवत सेवा करने वाले शिवजी के प्रति अपराध कर अपने जीवन को नष्ट न करें, क्योंकि इन शिवजी के कारण ही आज हमें श्रीमती राधा रानी के नाम की महिमा प्राप्त होती है, अन्यथा कौन बताएगा हमें।
Created with free version for non-commercial use।
और फिर महादेव जी ने पुण्यक व्रत के बारे में बहुत सुंदर रूप से माता पार्वती को बताया है। वे देवी पार्वती को कहते हैं कि प्रभु की प्रसन्नता प्रत्यर्थ पुण्यक व्रत किया, पुण्यक व्रत करो, जिसका वर्णन उन्होंने पहले किया कि किस प्रकार से करना है, और उस व्रत के प्रभाव के कारण उन्हें गणेश आदि पुत्र प्राप्त हो गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जब दक्षिणा देने की बात आई, क्योंकि सनक आदि तो उनके पुरोहित बने थे, तो ब्राह्मणों ने दान मांगा, तो पार्वती ने कहा जो चाहे मांगो, हम दक्षिणा के रूप
में आपको दे देंगे।
तो सनक आदि ने दक्षिणा के रूप में बोले हमें महादेव जी ही दे दो, तो पार्वती जी ने मना किया। तब समस्त देवी देवगणों ने आकर पार्वती जी को समझाया कि वे महादेव जी को दक्षिणा रूप में दे ही दे, और फिर वे उद्युत हो गए देने के लिए। और दिए जाने पर यह हुआ कि महादेव जी के बराबर गोदान करके महादेव जी को पुनः प्राप्त करने हेतु उन्होंने सनकादि से प्रार्थना की कि आप महादेव जी के बराबर गोदान ग्रहण करो। तो सनकादि बोले नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें वो अमान्य है, हम ऐसा विनिमय नहीं करेंगे, हम तो दिगंबर के साथ अतीत अटन करेंगे। यह सुनकर पार्वती तुरंत अपने शरीर अंत करने के लिए उद्यत हो गए, और तत्क्षण एक तेजो पुंज
created with free version for non-commercial use।
पार्वती जी ने स्तवन किया, तदोपरांत भगवान श्री कृष्ण ने पार्वती जी को दर्शन दिया, और पार्वती जी ने उस रूप कर देखने के पश्चात कहा कि मुझे उन्हीं के समान पुत्र की इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी कि मैं ही आपका पुत्र बन के प्रकट होऊंगा, और भगवान स्वयं गणेश के रूप में प्रकट हुए। गणेश जी के अवतरण का ये भी एक सुंदर कथा है, अभी इसके विस्तार में नहीं जाएंगे, कभी अन्य दिन इसकी चर्चा करेंगे। उस तेजोपुंज भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखने के पश्चात देवताओं की जो भी अभिलाषा थी वो भी पूरी हो गई, और भगवान वहां से अंतर्दान होने से पहले उन्होंने कुमारों को समझा बुझाकर पार्वती जी को शिव को लौटा के फिर भगवान वहां से अंतर्दान हो गए।
Created with free version for non-commercial
use। केदार क्षेत्र को रुद्रवन भी कहा जाता है। जब ब्रज यात्रा प्रसंग में आप इस रुद्रवन में आते हैं तो भविष्योत्तर पुराण में इसका मंत्र दिया गया है, कहते हैं कि तपस्समादीत संभूत रुद्र सिद्धि प्रदायिने नमो रुद्रवनाख्याय परिपूर्ण कलात्मने। तपस्या और समाधि से उत्पन्न हुए हे रुद्र सिद्धिदाता, संपूर्ण कलाओं के परिपूर्ण रूप में हे रुद्रवन आपको नमस्कार है। रुद्रवन ही केदारनाथ है। तो इस केदारनाथ में जब आप जाते हैं तो ये प्रार्थना हमें करनी है। इसी केदारनाथ और केदार क्षेत्र में एक गदाधर कुंड है, वहां पे जब आचमन या स्नान करते तो वहां का भी मंत्र बताया गया है, और वैशाख कृष्ण द्वादशी में
महारुद्रवन में जाके
स्नान करना चाहिए कहा गया है। इस क्षेत्र को या इस क्षेत्र की यात्रा करने का जो शुभ दिन है वो है वैशाख कृष्ण द्वादशी। तो जब आप इस गदाधर कुंड में जाते हैं तो क्या प्रार्थना करनी है, गदाधर विभू साक्षात आर्द्रार्थ वरदायिने तीर्थराजन वस्तुभ्यं गदाधर समावय। व्यापक सर्वव्यापक साक्षात रुद्र जी को वर देने वाले गदाधर तीर्थराज तुम्हें हमारा नमस्कार है। तो भगवान शिव के इस महान क्षेत्र की जो हमने परिक्रमा की है, इस परिक्रमा के कारण ही निश्चित रूप से हमारा जीवन
क्रिएटेड विथ फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज,
क्योंकि ये वो स्थान है जहां पे भगवान श्री हरि की तपस्या शिवजी ने की है और अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जुगल दर्शन, महाराज के दर्शन यहीं पे किए हैं। तो हमें निश्चित रूप से यह समझना चाहिए कि भगवान श्री हरि को हमें अगर प्राप्त करना है तो एक और एक ही मात्र साधन है, और वो साधन है भगवान श्री हरि के भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करना। भगवान श्री हरि के जो अनन्य भक्त हैं, जैसे कि शिवजी,
क्रिएटेड विथ फ्री वर्जन
फॉर नॉन कमर्शियल यूज़, इनका आश्रय जब हम ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान श्री हरि को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, विशेष करके हम सब वैष्णवों के लिए जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति करना चाहते हैं, उन सब भक्तों के लिए आवश्यक है कि हमें जानना चाहिए कि भगवान श्री हरि की भक्ति केवल भगवान श्री हरि के भक्तों के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकती है। और ऐसे महान भक्तों के द्वारा भगवान की जो की गई स्तुति है, उस स्तुति का जब गुणगान हम करते हैं तो हमारा हृदय बहुत शुद्ध हो जाता है, और उस शुद्ध विषय वासना मुक्त हृदय में भगवान श्री हरि फिर विराजमान।
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज,
जिसे बहुलाष्टमी कहा जाता है या राधा कुंड का आविर्भाव तिथि का दिन माना जाता है कि आज के दिन ही राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था। तो कहा जाता है कि राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो कि भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को, गौरी को उपदेशित है, उस स्तोत्र का जो भी व्यक्ति राधा कुंड के जल में जानू तक, घुटनों तक या कटी तक यानी कमर तक या वक्षस्थ यानी अपनी छाती तक जल में खड़े रहकर जब इस सुंदर अष्ट कटाक्ष स्तोत्र का जप कर लेता है या गान कर लेता है तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन होगा।
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल
यूज, तो आइए उस सुंदर श्लोक का, उस राधा रानी के कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए जो शिवजी ने की हुई प्रार्थना है, उस प्रार्थना का गान करते हैं।
वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र
भानुनंदिनी
व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि ह मां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि ह मां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि ह मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
इसका भावार्थ ऐसे है, समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं, आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं, आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली है, आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली है, आप राजा वृषभानु की राजकुमारी है, आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी है। हे जगत जननी श्री राधे मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे।
अशोक
वृक्षवल्लरीवितान मंडपस्थिते प्रवाल जाल पल्लव प्रवारुणांग्रि कोमले वरावय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष वाजनम।
आप अशोक वृक्ष की लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली है। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली है। आपके हाथ सुंदर कमल के समान है। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी है। हे सर्वेश्वरी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे।
अनंग रंग मंगल प्रसंग
भूरभुवां
ससद्भ्रमं सुविभ्रमं ससद्भ्रमं दृगंत पान पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने करा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम।
रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती है। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती है। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे।
तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभापरास्त कोटि शारदेन्दु मंडले
विचित्र चित्र
संचरश्चकुर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम।
अब बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली है। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली है। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली है। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्तों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे।
मदोन्मदाति यौवने प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अरण्य धन्य कुंज राज काम केली कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम।
आप अपने चिर यौवन के आनंद के मग्न रहने वाली है। आनंद से पूरित मन ही आपको मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत है। आप अपने अनन्य भक्त गोपियों से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधि में भी प्रवीण है। हे निकुंजेश्वरी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे।
अशेष हाव भाव धीर धीर हारूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम।
आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे? मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोल तेल लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने लललूल मील मनोद्य मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं, आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली है। हे वृषभानु नंदिनी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे? सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंबु कंडगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दित्ति रीरते सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंपिते कराकरिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित है, आप तीन रेखाओं से युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली है। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगल सूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगल सूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है।
Created with free version for non-commercial
use. आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छ से अलंकृत है। हे कीर्ति नंदिनी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे?
नितंब बिंबलंब मानस पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले। करींद्र शुंड दंडिका वरोह सौभ गोरुखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
Created with free version for non-commercial use.
आपका उर भाग में फूलों की मालाएं शोभायमान है, आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है, आपके जंगाए हाथी के सुंड के समान अत्यंत सुंदर है। हे ब्रजेंद्र नंदिनी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे?
अनेक मंत्रणाद मंजनोपरावस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वनाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विलंबि चारु चक्र में कराकरिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नूपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाली है। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी मां, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे?
अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद मजाचिते हि माद्रिजा पुलो मजा विरंचिजा वर प्रदे अपार सुद्धि वृद्धि दिग्द सद परांगुली नखे करा करिष्यसि अमां कृपा कटाक्ष भाजनम।
अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती है। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपके चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती। हे करुणा महिमा, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे?
मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति अद्भुतस्तवं निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्षभाजनं भवेत् तदैव संचित्र त्रिरूपकर्मनाशनम् लभेत्तदा व्रजेन्द्र सोनमण्डल प्रवेशनम्।
Created with free version for non-commercial use.
आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी है, आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी है, आप स्वधा देवी की स्वामिनी है, आप सब देवताओं की स्वामिनी है, आप तीनों वेदों की स्वामिनी है, आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली है, आप रमा देवी की स्वामिनी है, आप क्षमा देवी की स्वामिनी है, आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी है। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठाती देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियमान कर्मों का नाश होगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम के लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा।
श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधा की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री केदारनाथ धाम की जय।
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम काम्यवन की ओर चलेंगे और काम्यवन जो कि आदि वृंदावन कहा जाता है, केदारनाथ से काम्यवन की ओर जाते समय जो भी भगवान की अलग अलग लीला स्थली है उनका दर्शन करते हुए फिर हम काम्यवन में प्रवेश करें। हरे कृष्ण।
श्री कृष्ण। Created with free version for non-commercial use.